हैं कि किस प्रकार दुर्योधन द्वेष कर रहे हैं पांडवों से और प्रयास कर रहे हैं कि ये जो राज्य अब युधिष्ठिर महाराज को मिल चुका है, उनको राजकुमार घोषित किया जा चुका है, युवराज पद पर उनका अभिषेक हो चुका है, तो कैसे ये राज्य अब मुझे वापस मिले। प्रसन्न नहीं है। हमने चर्चा की कि कैसे द्वेष के कारण उनके हृदय में एक अग्नि भड़क रही है, जिसके चलते वे बस किसी न किसी तरह पांडवों को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। पिछली बार चर्चा की थी कि कैसे युधिष्ठिर, जब राज्याभिषेक उनका हो गया, जब उनको युवराज घोषित कर दिया, तो कैसे धृतराष्ट्र के हृदय में बड़ा दुख हुआ, द्वेष उत्पन्न हुआ। धृतराष्ट्र ने चर्चा की अपने मंत्री से क्या करना चाहिए, और मंत्री ने समझाया कि जो शत्रु है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, शत्रु की किसी भी प्रकार से उसको दूर करना चाहिए। देखिए, जब व्यक्ति को सलाह देने वाला कोई ठीक ना हो, पहले ही धृतराष्ट्र के हृदय में थोड़ा बहुत द्वेष था, और फिर जब कोई ऐसी सलाह दे देता है, ऐसा मार्गदर्शन करता है जिससे और ये बढ़ जाता है, तो फिर व्यक्ति पाप करने के लिए प्रेरित होता है। एक बात जान लीजिए, इस जगत में कोई पापी नहीं है। हम तो केवल कहते हैं ये पापी है, वो पापी है, दरअसल कोई पापी नहीं है। जब बालक जन्म लेता है, क्या वो पापी होता है? क्या उसके हृदय में ये भावना होती है कि मुझे आगे चलकर किसी की हत्या करनी है, किसी का धन छीनना है, किसी को धोखा देना है? नहीं। चाहे किसी भी परिवार में, किसी भी कुल में, किसी भी घर में जन्म ले बालक, वो पापी नहीं होता। तो फिर ऐसी क्या चीजें हैं जो उसे पाप करने के लिए प्रेरित करती हैं? पहली चीज, संग। जिस तरह का संग व्यक्ति करता है, वैसी प्रेरणा प्राप्त करता है। अगर संग अच्छा होगा तो निश्चित है कि वो अच्छी प्रेरणा प्राप्त करेगा। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण आपको देते हैं। अमेरिका में एक व्यक्ति थे जिनके पीछे पुलिस लगी थी, जिन्होंने बहुत अपराध किए थे, पुलिस उन्हें पकड़ना चाहती थी, छुपने की जगह ढूंढ रहे थे, कोई जगह मिल नहीं रही थी। एक जगह मिली, इस्कॉन मंदिर, क्योंकि पुलिस मंदिरों में जाती नहीं है, साधारणतया धर्म का स्थान है। तो इसने सोचा कि मैं वहां जाकर छुप जाता हूं। पापी था, अपराधी था, पुलिस ढूंढ रही थी, इस्कॉन मंदिर में चला गया। वहां के अध्यक्ष से बात की कि आपके मंदिर में रहूंगा, आप जो सेवा कहेंगे वो करूंगा, बस एक ही शर्त है मेरी, मुझे कभी बाहर मत भेजिएगा, किसी भी सेवा के लिए बाहर नहीं भेजिएगा। मंदिर में आप जो बोलिए, झाड़ू लगाना, टॉयलेट साफ करना, कुकिंग करना, जो आप कहेंगे करूंगा। मंदिर के अध्यक्ष ने कहा कि हमारे मंदिर में नियम है, जो भी रहते हैं सुबह जल्दी उठना पड़ता है, सुबह 4:30 बजे मंगल आरती होती है, फिर जप होता है, जब प्रसाद मिले तभी लेना है, बाहर का कुछ खाना नहीं है। उसने कहा सब मंजूर है, आप जो कहेंगे वो, बस मुझे बाहर मत भेजिएगा, क्योंकि जानता था बाहर जाएगा तो पकड़ा जाएगा। 1 वर्ष तक वो मंदिर में रहे, भक्तों का संग किया, जप किया, और 1 वर्ष तक भक्तों के संग में रहने के बाद उनके हृदय में आया कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं झूठ बोल रहा हूं इन लोगों को, मैंने बताया नहीं कौन हूं, तो चले गए अध्यक्ष के पास और उन्होंने कहा मैंने आपसे झूठ कहा था। एक वर्ष पहले जब मैं आया था मैंने झूठ कहा था कि मैं किसी और स्थान से आया हूं, दरअसल मैं यहीं का हूं, और इतना ही नहीं मैं एक अपराधी हूं, एक चोर हूं, मेरे पीछे पुलिस लगी है और पिछले एक वर्ष से मैं यहां पर छुपा हुआ हूं, कोई जानता नहीं है, इसीलिए मैं कभी बाहर नहीं जाता था। तो अब आप बताइए क्या करना है, आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। मंदिर के अध्यक्ष ने कहा आपको अपने आप को पुलिस के हवाले करना चाहिए, क्योंकि आपने गलत कार्य किया है उसका दंड मिलना चाहिए आपको, भागिए नहीं अपने दंड से, फिर जो होगा भाग्य में वो कृष्ण देखेंगे। उन्होंने स्वीकार किया। देखिए संघ का असर, पहली बात, जो व्यक्ति पुलिस से छुपने के लिए मंदिर आया था केवल संघ के कारण, अब वो पुलिस के पास जाने के लिए तैयार हो गया, खुद जो छुप रहा था वो खुद तैयार हो गया मंदिर जाने के लिए, पुलिस में जाने के लिए। तो फिर चला गया पुलिस स्टेशन, पुलिस को समर्पण किया, पुलिस को बड़ा आश्चर्य हुआ, पिछले एक वर्ष से हम ढूंढ रहे हैं, व्यक्ति गायब हो गया था। ये साफ सफाई बाद में कर लीजिएगा, बंद कर दीजिए, बाद में कर लीजिए। पुलिस को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे एक वर्ष से हम ढूंढ रहे थे, कहीं ढूंढ नहीं पाई, अपने आप आ गया। और उससे समर्पण किया, केस हुआ उसके ऊपर जो भी उसने कार्य किए थे। तो जज ने सोचा कि इसको दंड देना चाहिए, तो जज ने पूछा पहले ये बताइए आप एक साल तक कहां थे, पिछले एक वर्ष आप कहां छुपे हुए थे। तो उसने कहा मैं इस्कॉन मंदिर में छुपा हुआ था। तो आप वहां रहकर क्या कर रहे थे, जज ने पूछा। तो उसने अपनी दिनचर्या बताई। उसने कहा कि मैं सुबह 3 बजे उठता हूं, रोज 3 बजे उठकर जप करता हूं, मैं टॉयलेट साफ करता हूं, मैं मंदिर साफ करता हूं, मैं बर्तन साफ करता हूं। तो जब जज ने सुना तो उन्होंने कहा आप एक काम कीजिए, आप वहीं वापस जाइए, इससे बड़ी पनिशमेंट तो हमारे जेल में भी नहीं है। हम लोग भी कैदियों को 3 बजे नहीं उठाते हैं, हम भी उनसे रोज टॉयलेट साफ नहीं कराते हैं, तो इतनी बड़ी पनिशमेंट पहले ही आपको मिल रही है, आप वहीं चले जाइए, यहां रहने की आवश्यकता नहीं है। जज ने छोड़ दिया उन्हें। तो देखिए भगवान की योजना, पहले छुपकर रह रहे थे, अब कानूनन रह रहे हैं, जज ने कहा जाइए आप वहीं रहिए। तो इसीलिए व्यक्ति पापी कब बनता है, हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, पहली चीज संग से। तो बालक जन्म लेते पापी नहीं होता, इसीलिए हमने कहा कोई व्यक्ति पापी नहीं है, उसको पापी बनाया जाता है, स्थितियां पापी बनाती हैं, व्यक्ति उसका संग पापी बनाता है। हाँ, उसके पूर्व कर्म भी एक भाग अदा करते हैं, पूर्व कर्मों से भी, लेकिन पूर्व कर्मों से पाप करने का बीज प्राप्त होता है, व्यक्ति पापी नहीं बनता। उस बीज को अगर सही पोषण मिल जाता है तो वो पापी बन जाता है, लेकिन अगर वही बीज को सही पोषण नहीं मिले, पाप करने के बीज है, प्रवृत्ति है, लेकिन सही पोषण नहीं मिले, वो कभी पाप नहीं करता। इसका भी उदाहरण आप देख सकते अपने जीवनों में, छोटा सा बच्चा होता है, आप उसको मार्केट लेकर जाइए, वो चलते चलते कुछ चॉकलेट उठा लेता है बिना किसी को बताए, बिना किसी दुकानदार को कहे, ये बीज है पाप का, अर्थात ये पाप करेगा आगे चलकर। लेकिन अगर उसी बालक को अच्छे घर में अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, उसको समझाया जाता है, तो वो पाप नहीं करता। तो पूर्व कर्मों से हमें पाप का बीज प्राप्त होता है, संस्कारों से उस बीज को पोषण मिलता है, संग उस बीज को वृक्ष बना देता है और फिर व्यक्ति पाप करता है। दुर्योधन भी पापी नहीं था, शकुनी के संग में पापी बन गया, शकुनी के संग ने उसे पापी बना दिया, उसे सोचने पर ये मजबूर कर दिया कि युधिष्ठिर मेरे शत्रु हैं। यही मान लीजिए एक हम लोग कल्पना करते हैं कि यही दुर्योधन अगर अच्छे संघ में बड़ा हुआ होता, जहां पर उसको सिखाया जाता, मान लीजिए कुंती के अधीन रहता और कुंती सिखाती है तुम्हारे बड़े भाई हैं, इनके रोज पांव छूना, रोज इन जो ये कहे वही करना, तो क्या दुर्योधन पापी बनता? क्या हम आज कहते कि दुर्योधन बहुत बड़ा धर्मी है, पापी है? नहीं, हम आज उसका भी गुणगान करते जैसे अर्जुन और उनके अन्य भाइयों का करते हैं। इसीलिए संग बहुत महत्वपूर्ण है। तो पापी बनाते हैं व्यक्ति को संग और दूसरे संस्कार। किस प्रकार के संस्कार हम देते हैं बालक को? छोटा बच्चा नहीं जानता जीवन क्या है, भक्ति क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, कुछ नहीं जानता। उसको संस्कार दिए जाते हैं। संस्कार क्या है? संस्कार माता पिता से, गुरु से, बड़ों से और संबंधियों से प्राप्त होते हैं। संस्कार बालक के मन पर पड़े हुए छाप है, उसे संस्कार कहते हैं। अर्थात बालक देखता है बचपन में किताबों में लिखा है शराब पीना बुरी बात है, सिगरेट पीना बुरी बात है, ये बालक के मन पे संस्कार नहीं पड़ते। बालक घर जाता है अपने पिता को शराब पीते हुए देखता है, उसके मन पे संस्कार पड़ते हैं, जो किताब में लिखा है वो सही नहीं है, क्योंकि मेरा पिता ये शराब पी रहा है। तो अगर मेरे पिता शराब पी रहे हैं तो जो किताब में लिखा है वो गलत है। तो संस्कार गलत पड़े तो बच्चे ने जान लिया कि अगर मेरे पिता शराब पी सकते हैं, मेरे पिता सिगरेट पी सकते हैं, तो इसका अर्थ है, क्योंकि अपने माता पिता को वो गुरु मानता है। बालक का, बच्चे का स्वाभाविक आकर्षण होता है अपनी मां से और अपने पिता से, स्वाभाविक। उसको बताना नहीं पड़ता कौन उसकी मां है। एक जानवर भी अपनी मां को पहचान लेता है। अभी हम कुछ दिन पहले कुडाल में थे, आप में से बहुत से भक्त थे, हम गौशाला गए, वहां पर एक छोटा सा बच्चा था, अभी अभी कुछ दिन पहले जन्म हुआ, दो दिन चार दिन पहले, छोटी सी गाय थी और उसको बांध कर रखा था, भागना चाह रही थी, दूध पीना चाह रही थी, तो हमें अच्छा नहीं लगा, हमने खोल दिया कि चलो चली जाएगी, हमें पता नहीं था कि क्यों बांध के रखा है, तो हमने खोल दिया, वो चली, अब वो ढूंढ रही है। पहली गाय के पास गई, मुंह लगाया ये माँ नहीं है, आगे गई मुंह लगाया ये माँ नहीं है, लेकिन माँ मिल गई। अब हमें भी नहीं पता था कि कौन इसकी माँ है, और ये बालक, ये छोटे से बछड़ा, ये गाय का बार बार एक गाय के पास जा रहा था और गाय उसको ऐसे जोर से सींग मार रही थी, तो हम उसको कह रहे थे अरे ये तुम्हारी माँ नहीं है, अपनी माँ के पास जाओ, ढूंढो कौन है। लेकिन वो बच्चा उसी के पास जा रहा था और वो गाय बहुत जोर से उसको मार रही थी, और फिर जाता था, फिर मार खाता था, फिर जाता था। हमें भी बड़ा अजीब लग रहा था, बहुत छोटा था, हमें लग रहा था कहीं सींग इसके शरीर में इधर से घुस के इधर से निकल नहीं जाए, इतना छोटा सा बच्चा था, लेकिन जाता वहीं था और वो मार रही थी। तो हमने वहां जो काम कर रहे थे उसको पूछा, भाई इसकी माँ कहाँ है, इसके पास ले जाओ माँ को, माँ के पास ले जाओ ताकि दूध पी ले। तो उसने कहा वही है उसकी माँ। हमने कहा नहीं, हो नहीं सकता, वो तो मार रही है। उसने कहा क्या करें, ये माँ मार रही है, दूध नहीं दे रही है उसको, होगा कुछ कारण, पता नहीं जो भी कारण हो, लेकिन बच्चा पहचान रहा था, मार रखा रहा था लेकिन जानता था कि यही है माँ, प्रेम था उसको। हम लोग देखते हैं कई बार, हम लोग जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे होते हैं तो बीच में कोई परिवार साथ में होते हैं। हमने एक बार देखा, कई साल पहले हम ट्रेन में जा रहे थे तो एक परिवार साथ में था, कोई परिवार था ट्रेन में, और उसमें छोटा सा बच्चा था, बहुत शैतानी कर रहा था, कभी ऊपर चढ़ जाता, कभी यहाँ चला जाता, माँ चिल्लाती रहती, सुन ही नहीं रहा था। तो जब बहुत शैतानी हो गई, माँ ने उसको पकड़ा और एक जोर से थप्पड़ लगाया उसको, सब वहीं पे सबके सामने बहुत जोर से मारा, बहुत सही में जोर से मारा था। हमको भी बड़ा, वैसे हमें भी अच्छा नहीं लग रहा था, इतना हंगामा कर रहा है बच्चा, क्यों नहीं माँ संभाल रही है, लेकिन जब थप्पड़ मारा तो हमें भी अच्छा नहीं लगा, रहे इतने छोटे से बच्चे को इतनी जोर से मार दिया। लेकिन उस बच्चे ने क्या किया, जैसे ही माँ ने मारा जोर से रोने लगा और रोते रोते अपना मुंह माँ की ही गोदी में छुपा दिया, कहीं दूर नहीं गया, माँ से ये नहीं कहा आज से तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा या अभी ट्रेन से कूद कर जान दे देता हूं, कुछ नहीं, माँ के पास ही गया। तो स्वाभाविक प्रेम होता है बालक को, संतान को, माँ और पिता से, और इसीलिए वो उनके पहले गुरु होते हैं। तो बच्चा देखता है माँ बाप क्या कर रहे हैं, हम जानते नहीं, हम सोचते हैं छोटा बच्चा है इसको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसके मन पे वो प्रभाव पड़ जाता, इसे संस्कार कहते हैं। इसीलिए माता पिता की जिम्मेदारी है कि कैसे संस्कार दें। दुर्योधन द्वेषी बना अपनी माँ के कारण, गांधारी ने द्वेष किया कुंती से, वही द्वेष आया दुर्योधन में। दुर्योधन द्वेषी बना अपने पिता के कारण, धृतराष्ट्र ने द्वेष किया पांडु से और वही द्वेष आया दुर्योधन। ऐसा नहीं था कि धृतराष्ट्र को पांडवों से प्रेम नहीं था, प्रेम करता था, अपने छोटे भाई के पुत्रों से प्रेम करता था, लेकिन द्वेष था, आसक्ति थी सत्ता से, राज्य को पाना चाहता था, और इसीलिए उस प्रेम से बड़ा द्वेष हो गया और वही द्वेष दुर्योधन में आया। तो व्यक्ति कोई भी पापी नहीं होता, उसे पापी बनाते हैं उसका संग, उसके संस्कार और कभी कभी स्थिति। स्थितियां भी कभी कभी व्यक्ति को पाप करने में मजबूर करती हैं, लेकिन अगर उसके संस्कार अच्छे हैं तो वो किसी भी स्थिति में पाप नहीं करेगा। इसीलिए संग और संस्कार ये बहुत महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद जी ने ये संस्था बनाई, एक उद्देश्य दिया उसका, कई उद्देश्यों में से एक उद्देश्य ये है कि यहां पर संग प्राप्त हो लोगों को, वो आए और अच्छा संग प्राप्त करें जिससे उनके अच्छे संस्कार हो। भक्तों के संग में आकर अच्छा संग प्राप्त होता है, शास्त्र की कथाएं सुनकर मन पर अच्छे संस्कार पड़ते हैं, और जब ये दोनों अच्छे होते हैं तो इतना ही नहीं कि केवल एक बालक जो पापी नहीं है वो पापी नहीं बनेगा, बल्कि जो पापी है, जो पाप कर रहा है, अच्छे संग से, अच्छे संस्कार से वो पाप को त्याग देता है और भगवान की भक्ति करता है। और इसीलिए प्रभुपाद चाहते हैं कि संस्था के द्वारा हर गली में, हर स्थान में, हर गांव में, हर शहर में इन संस्कारों को, इन संग को प्रदान किया जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति पापी नहीं रहे, समाज से पाप को समाप्त करने के लिए प्रभुपाद जी ने संस्था बनाई, समाज में भक्ति का प्रचार करने के लिए यह संस्था बनाई, लोगों को भगवान के महत्व और भक्तों की सेवा करने के अवसर देने के लिए संस्था बनाई, और आज ये संस्था सारे जगत में इस कार्य को कर रही है। तो दुर्योधन संस्कारों के कारण, शकुनी जैसे व्यक्ति के संग के कारण इतना द्वेषी हो गया, इतना पापी हो गया कि उसने निर्णय कर लिया कुछ भी क्यों ना करना पड़े, अगर मुझे मारना ही क्यों ना पड़े इन पांडवों को, मुझे राज्य चाहिए हर स्थिति में, हर कीमत पर, फिर कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। मारने के लिए तैयार हो जाना, किसी की हत्या कर देना, कितना द्वेष या कितनी आसक्ति होगी उस व्यक्ति को सत्ता से जो किसी को मार सके, अपने ही भाइयों को मार सके। शास्त्रों में कहा गया है कि कुछ व्यक्तियों को तुरंत वध कर देना चाहिए, कुछ व्यक्तियों का, जैसे जो व्यक्ति शस्त्र से आक्रमण करने आए, तब हमें खड़े होकर भगवान की पूजा नहीं करनी है। कोई शस्त्र से आक्रमण करने आ रहा है अपने बचाव के लिए, आप उसे मार सकते हैं, ये शास्त्र कहता है। या फिर ऐसे व्यक्ति का जो जहर देकर मारने का प्रयास करे, इनको आतताई कहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता के पहले अध्याय में इसका वर्णन करते हैं, आतताई। तो या तो जो आपको जहर देकर या किसी को जहर देकर मारने का प्रयास करे उसको मारा जा सकता है। जो व्यक्ति किसी दूसरे की पत्नी को हरण करने का प्रयास करे उसको तुरंत वध किया जा सकता। शास्त्रों में वर्णन है कि एक सभ्य पुरुष को दूसरे की स्त्री को, दूसरे की पत्नी को अपनी माता के समान देखना चाहिए। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत, दूसरे के धन को पत्थर कंकड़ के समान, रामायण में कहते हैं जहर के समान देखना चाहिए दूसरे के धन को। और जो 14 स्थान हम कल वर्णन कर रहे थे जहां भगवान को रहने का स्थान दिया या भगवान रहते, उनमें से एक स्थान ये है कि जो व्यक्ति दूसरे की पत्नी को अपनी माता के समान मानता हो, दूसरे के धन को विष के समान मानता हो, आपको अपने प्राण धन मानता हो, हे राम आप उनके हृदय में रहिए, ऐसा ऋषि मुनियों ने कहा। तो जो व्यक्ति दूसरे की पत्नी को हरण करे उसका तुरंत वध कर देना चाहिए। जो व्यक्ति जलाकर मारने का प्रयास करे उसका तुरंत वध कर देना चाहिए। तो ऐसे शास्त्रों में वर्णन है। तो अपने ही भाइयों को मारने के लिए तैयार है दुर्योधन, देखा नहीं जा रहा उनका ऐश्वर्य, पिता के पास जाते हैं, धृतराष्ट्र के पास जाते हैं, आज्ञा दीजिए, कहिए इनको कि चले जाएं यहां से, इनको अब वारणावत में भेज दीजिए। वारणावत एक स्थान था जो वहां से बहुत दूर था, ज्यादा कोई वहां पर राज बसा नहीं था, आप इन्हें वारणावत में भेज दीजिए, वहां रहेंगे जीवन भर और हम यहां राज्य करेंगे हस्तिनापुर में। धृतराष्ट्र ने कहा कि दुर्योधन, पांडु ने कभी कोई गलत कार्य नहीं किया जीवन में, धर्म के अनुसार उसने राज्य किया, उसका जीवन धर्म के अनुसार चलाया, और युधिष्ठिर ये तो पांडु से भी आगे है धर्म का पालन करने में, कभी अधर्म नहीं करता, कभी असत्य नहीं बोलता, और इतना ही नहीं सारे लोग प्रेम करते हैं इससे, सारी प्रजा प्रेम करती है, मंत्री प्रेम करते हैं, सेनापति प्रेम करते हैं। अगर मैंने इसको हटा दिया तो ये सब विरोध करेंगे। दुर्योधन ने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, आप जैसे भी हो, आप जो चाहें उन्हें कहिए, लेकिन उन्हें वारणावत भेज दीजिए, वो वहां रहेंगे, और आप चिंता नहीं कीजिए भीष्म की, द्रोणाचार्य की, अपने सेनापतियों की, इनको मैंने बहुत पैसा देकर रखा है। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री गौरताय की जय। दुर्योधन कहने लगा प्रजा की चिंता मत कीजिए, दरअसल खजाना मेरे हाथ में है, और आप जानते हैं मैं खजाने में बहुत सारे उपहार प्रजा को दे रहा हूं, जिससे प्रजा संतुष्ट है, कोई विरोध नहीं करेगा। भीष्म इत्यादि वो तो उनको राज्य चाहिए ही नहीं, द्रोणाचार्य ये तो हमारे टुकड़ों पर पलते हैं, इसलिए आप चिंता नहीं कीजिए, वारणावत भेज दीजिए। दुर्योधन की बात को मान लिया धृतराष्ट्र ने, उस समय वारणावत में एक उत्सव हो रहा था। उन्होंने कहा कि पांडवों से एक काम करो, वहां वारणावत में बहुत सुंदर उत्सव हो रहा है, आप लोग वहां चले जाइए उस उत्सव को देखने के लिए, कुंती को भी साथ ले जाइए। पांडवों ने स्वीकार कर लिया। धृतराष्ट्र महाराज ने कहा ठीक है, चले गए, तैयार हो गए जाने के लिए वारणावत। इधर दुर्योधन ने अपने एक बहुत ही निकट के व्यक्ति पुरोचन को बुलाया, पुरोचन यहां आओ, जैसा मैं कहता हूं वैसा करना, वारणावत में जाओ, पांडवों के लिए एक बहुत सुंदर महल बनाओ। पुरोचन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे ये दुर्योधन, ये तो पांडवों का विरोधी है, ये उनके लिए महल क्यों बनवा रहा है। और तब दुर्योधन ने कहा लेकिन महल कैसा होना चाहिए, महल की दीवारों में अंदर सारा ऐसा पदार्थ भरना जो आग लगते ही तुरंत जल जाए, जैसे घी है, लाख है, ऐसी चीजों को भर दो, सूखी लकड़ी है, लेकिन बाहर से दिखना नहीं चाहिए, बाहर से ये सुंदर महल दिखना चाहिए, किसी को शंका नहीं हो कि ये ऐसे पदार्थों से बना है, और फिर जब मैं कहूं तब उसमें आग लगा देना। देखिए क्या योजना बनाते हैं मारने के लिए, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, कि वे लोग मर भी जाएं और कोई दुर्योधन को कह नहीं सके। तो पुरोचन चले गए, वारणावत में आए, पांडव एक स्थान में रहने लगे, पुरोचन तब तक महल बना रहे थे, वारणावत में घूमने लगे, लोगों के बहुत प्रिय हो गए पांडव। फिर महल तैयार हुआ, पुरोचन ने कहा कि ये आपके लिए महल है, आप आइए। जैसे ही पांडव आए, महल में प्रवेश किया, उत्सव हुआ, उसके बाद पांडवों को कोई शंका हो गई कि ये क्या है, यहां से कैसी गंध आ रही है। दरअसल पांडवों को सूचना दी थी विदुर ने। देखिए राजनीति, जो बातें दुर्योधन धृतराष्ट्र कर रहे हैं विदुर को बातें पता चल गई, ये मंत्री है, सब कुछ जानते थे क्या चल रहा है। उन्होंने एक संदेश भेजा, सबके सामने संदेश दिया, लेकिन कोई समझ नहीं पाया। महाभारत में वर्णन है कि उन्होंने म्लेच्छों के द्वारा बोलने वाली भाषा का इस्तेमाल किया, कुंती भी नहीं समझ पाई, केवल युधिष्ठिर समझे। उन्होंने सबके सामने युधिष्ठिर को संदेश दिया कि दुर्योधन तुम्हें जलाकर मारने की योजना बना रहा है, वहां पे एक ऐसा महल होगा जो जलकर राख हो जाएगा, तुम अपने लिए पहले से भागने का मार्ग बना लेना। लेकिन ये बात इस तरह सबके सामने कही, कुंती ने सुनी, बाकी पांडवों ने सुनी, अन्य लोगों ने सुनी, किसी को समझ नहीं आया। सब सोचने लगे विदुर जी को ये क्या हो गया, क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, कि जब वन में आग लगती है तो कोई बच नहीं पाता, लेकिन जो चूहा बिल में रहता है वो बच जाता है। विदुर जी तो कोई छोटे बालक नहीं थे जो चूहे और बिल्ली की बात करें। तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, और वो भी ऐसी भाषा में जो अच्छे लोग नहीं बोलते हैं। देखिए भाषा भी बड़ी महत्वपूर्ण है, भाषा से व्यक्ति के चरित्र का पता चलता है। इसीलिए कहा गया है कि जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो तब तक सभा में अच्छा लगता है जब तक बोलता नहीं है। मूर्खोपि शोभते तावत् सभायां वस्त्र वेष्टितः। कहा गया है कि मूर्ख तब तक लोगों को अच्छा लगता है जब सभा में बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर बैठा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बड़ी सभा है, उसमें बड़े अच्छे कपड़े, शानदार कपड़े पहनकर बैठा है, तो लोग को लगे अरे वाह क्या व्यक्ति है, दूर से ही बढ़िया राजा महाराजा, कोई बहुत अच्छा सभ्य परिवार का लगता है। मूर्खो पिशोभते तावत् सभायां वस्त्र वेष्टितः, यावच्च शोभते मूर्खो। कब तक ये मूर्ख की शोभा बनी रहती है, तावच्च शोभते मूर्खो यावत् किंचित न भाषसे। जब तक वो अपना मुंह बंद रखता है, जैसे ही बोलने लगता है लोग समझ जाते हैं ठीक है इसको हटाओ पीछे खड़ा करो। तो इसीलिए भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा से व्यक्ति का चरित्र पता चलता है, भाषा से व्यक्ति की सभ्यता का पता चलता है, और भाषा से व्यक्ति के ज्ञान का पता चलता है कितना ज्ञानी है। तो इसीलिए ऐसी भाषा से उन्होंने समझा दिया था। अब युधिष्ठिर महाराज ने देख लिया, फिर भी उस महल में रहने लगे। दिन में बाहर चले जाते घूमने फिरने के बहाने, और रात में दरवाजे पर भीम और अर्जुन खड़े रहते। तो पुरोचन रोज सोचते आज जलाऊंगा, लेकिन देखते भीम खड़े हैं, अर्जुन खड़े हैं, जलाते नहीं। ऐसे एक वर्ष बीत गया। एक वर्ष तक वहीं रहे पांडव वारणावत में, लेकिन सावधान रहते थे। और उस एक वर्ष में विदुर जी ने अपने एक खनिक को भेजा। खनिक यानी जो गुफा बनाता, खदन करता, खोदता है। और उसने आकर महल के बीचों बीच, क्योंकि पुरोचन हमेशा देखता रहता था, अब कहीं आवाज होगी, खट 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 आवाज आएगी तो जाल जाएगा, तो इसीलिए महल के बीचों बीच से उन्होंने एक रास्ता निकाला, एक गुफा बना दी पांडवों के भागने के लिए। इसको समय लगा। और जब गुफा तैयार हो गई तो उसका मुंह ऐसे ढक दिया गया मानो वो कुछ हो ही ना। ऐसे लगता था कि जैसे जमीन है, कोई भी आए उसको पता नहीं चलता था। तो उस समय जब बहुत समय बीत गया तो कुंती महारानी ने कहा युधिष्ठिर महाराज से कि अब लग रहा है कि ज्यादा समय अगर हम लोग रहेंगे तो ज्यादा सावधान नहीं रह पाएंगे, ये लोग हमें मार देंगे। अब एक काम करते हैं, हम खुद ही इसको जला देते हैं, क्योंकि ये तो ज्वलनशील है, जलकर समाप्त तो होगा, हम खुद ही इसको जलाकर भाग जाते हैं, नहीं तो ये लोग हमें मार डालेंगे। युधिष्ठिर ने कहा ठीक है। कुंती महारानी से कहा कि आज आप एक उत्सव कीजिए, आज दान कीजिए लोगों को। तो कुंती ने एक बहुत बड़ा उत्सव किया, बहुत सारे लोगों को बुलाया, सारे लोग आए वारणावत में। कुंती ने बहुत दान किए, कपड़े दान किए, गहने दान किए, गायें दान की। और जब ये सबको पता चला कि दान हो रहा है, कुंती महारानी दान कर रही हैं, तो अलग अलग जगह से लोग आए, उनमें एक भीलनी भी आई। ये देखिए भगवान की योजना। दरअसल हम लोग सोचते हैं कि हमारे जीवन में जो हो रहा है वो हम कर रहे हैं, लेकिन भगवान की योजना से उन्हीं भीड़ में एक भीलनी आई। भीलनी अर्थात जो जंगल में रहती थी, और अपने पांच पुत्रों के साथ, और उसके पांच पुत्र इनके ही समान थे, बड़े हो चुके थे। कुछ खाने को चाहिए था, कुछ कपड़ा चाहिए था, चले आए वे लोग। चले ऐसे ही नहीं आए, महाभारत लिखता है भगवान की योजना थी। अभी हमने कृष्ण का वर्णन नहीं किया है महाभारत में, अभी तक पांडवों का वर्णन हो रहा है। अगले सोमवार को वर्णन करेंगे कृष्ण का, कि जब यहां पर पांडव अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ले रहे थे तो कृष्ण क्या कर रहे थे, मथुरा में थे या द्वारका में थे, कृष्ण कहां थे, ये वर्णन कल करेंगे। लेकिन कृष्ण जहां भी थे, कृष्ण पांडवों की रक्षा कर रहे थे। ये भगवान है। जरूरी नहीं है भगवान हमारे सामने हो हमारी रक्षा करने के लिए। भगवान जहां भी हैं वहां से रक्षा करते हैं, अपने भक्त की रक्षा कहीं से किसी भी तरह करते हैं। भगवान को भक्त की रक्षा करने के लिए जरूरी नहीं है कि आना पड़े। हां, जब आना भी होता है तब आते भी हैं। तो वहीं बैठे बैठे व्यवस्था कर दी, इस भीलनी को भेज दिया, पांच पुत्रों के साथ आ गई, शराब पिए हुए थी, बहुत कुछ खा लिया, थक गई, सो गई वहीं पर। अब महल में वो सो गई, और क्योंकि उत्सव हुआ, पुरोचन इत्यादि भी सो गए खा पी कर, सब लोग चले गए, रात्रि का समय था। और अब भीम ने उसके दरवाजे पर, उस पूरे महल में आग लगा दी, और ये लोग गुफा से बाहर निकल गए। और जब आग लगाई तो इतनी भीषण आग लगी, क्योंकि वो महल बना ही था ज्वलनशील पदार्थों से, तो तुरंत सारा महल जलने लगा, सारे शहर में हाहाकार हो गया। लोग आए लेकिन कुछ कर नहीं पाए, इतनी बड़ी आग थी, प्रयास कर रहे हैं बुझाने का, बुझा नहीं पाए, सारा महल जल चुका था। लेकिन पांडव और कुंती निकल गए, वे बाहर आए, गुफा एक नदी तक आती थी, गंगा नदी गंगा के तट पर आए और वहां पर उनके लिए नाव तैयार खड़ी थी। भीम ने देखा बहुत सुंदर नाव है और ऐसा भाग महाभारत में वर्णन है कि उस नाव में यंत्र लगा था, मोटर बोट थी वो। हाँ, हम लोग सोचते हैं हम लोग बहुत एडवांस हो गए हैं, ये जो मोटर है हमने बना दी है। महाभारत में वर्णन है उस समय हवा की गति से चलने वाली मोटर थी वो। आजकल की मोटर नहीं कि हवा से नहीं चल पाती है, जहां हवा है बंद हो जाती मोटर बोट। तो उसमें यंत्र लगा था, बहुत स्पष्ट ये शब्द इस्तेमाल किया है, यंत्र युक्त नाव। तो यंत्र युक्त यानी मोटर बोट। तो उस समय भी हमारी जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत आगे थी। दरअसल अब जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो पिछड़ी हुई है, हम लोग अपने आप को केवल एडवांस मानते हैं। जिस समय अर्जुन से मय दानव प्रसन्न हुए थे, इसका वर्णन आगे करेंगे, तो उस समय मय दानव ने कहा था मैं प्रसन्न होकर तुम्हें ये तंत्र विद्या सिखाता हूं, ये यंत्र इत्यादि की विद्या सिखा देता हूं, यंत्र तंत्र विद्या। तो उस समय श्री कृष्ण ने कहा था कि नहीं, मय दानव को रोक दिया, ये जो विद्या है ये जो टेक्नोलॉजी है कलयुग के लिए, अभी नहीं, ये बाद में, ये नीचे स्तर है, अभी हम लोग बहुत एडवांस है, जब लोग एडवांस नहीं होंगे तब देना उनको। तो इसीलिए अभी जो हमारी टेक्नोलॉजी है, चाहे उसमें प्लेन उड़ाना हो, हम लोग बोलते कितना एडवांस हो गए, लोग पहले पत्थर से चलते थे, पैदल चलते थे, अभी देखो प्लेन है, 2 घंटे में यहाँ से दिल्ली पहुँच जाते हैं हम लोग, कितनी बड़ी प्रगति हो गई है। कोई प्रगति नहीं है। हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि योगी मन की गति से चलते थे, आप चला लीजिए कोई प्लेन मन की गति से। अभी यहां बैठे हैं, बैठे बैठे मन एक क्षण में अमेरिका चला जाता है, ये मन की गति है। आपके घर चला जाएगा, ये मन की गति है। कौन सा प्लेन उड़ सकता है? हमारे योगी उड़ा करते थे। शास्त्रों में वर्णन है कि योगी स्वर्ग में गंगा में डुबकी लगाते थे, पृथ्वी पर निकलते थे, सूर्य की किरण को पकड़कर ट्रैवल करते थे, उनको कोई टिकट वीजा खरीदने की जरूरत नहीं होती थी। तो उस समय हमारा विज्ञान बहुत आगे था, अब तो हम पिछड़ गए हैं। हमें वो पायलट चाहिए, तंत्र चाहिए, वो बटन दबाए तब जाएगा, और अगर किसी दिन उसके मन में आए कि इन सबको लेकर मैं प्लेन क्रैश करा देता हूं तो सारे के सारे मारे जाते है ना। अभी हुआ था थोड़े समय पहले, एक पायलट ने बस सोच लिया कि बस मुझे भी मरना है, इनको भी, मैं भी मरूंगा इनको भी लेके मरूंगा, और सारा प्लेन ऊपर उड़ रहा था 30,000 फुट की ऊंचाई पर, 50,000 फुट की ऊंचाई पर, वहां से नीचे लेकर आ गए और सीधे तेज गति से ले जाकर एक पर्वत पर घुसा दिया, सारे के सारे मारे गए। बताइए, ये तो हमारा विज्ञान है, प्रगति है हमारी, लेकिन हमारे ये सब पहले से दिया हुआ है शास्त्रों में। जैसे हमने शुरुआत में दुर्योधन के जन्म के समय कहा था, टेस्ट ट्यूब बेबी क्लोनिंग, हम लोग सोचते हमने प्रगति की, दुर्योधन टेस्ट ट्यूब बेबी था, द्रोणाचार्य टेस्ट ट्यूब बेबी है, ये तो उस समय से चल रहा है। आप तो केवल उसको ढूंढ ढांढ कर थोड़ा बहुत कुछ करके अपना नाम लगाकर और खुद बड़े प्रसिद्ध बन रहे, नोबेल प्राइज मिल जाता है। तो दुर्योधन ने योजना बना ली, अब सब जल गया, पूरा वारणावत में हंगामा हो गया और सब लोग आकर दुर्योधन को दोष देने लगे, ये दुर्योधन की चाल है, और बहुत दुखी हो गए कि हाय पांडव मर गए। और जब सब आग क्षमा, और उसमें वो जो खनिक था वो भी वहां था जिसने खोदी थी सुरंग, और उसका काम क्या था, जैसे ही जल जाए तो जब जाएं लोग सब हटाकर देखने के लिए, तो जल्दी से जाके उस सुरंग में मिट्टी डालकर बंद कर देना, ताकि लोगों को दिखे नहीं कि अरे एक सुरंग है, क्या बच गए क्या पांडव, कहीं चले गए नहीं। तो उसने जाकर, बाकी लोग ढूंढ रहे थे कहां गए, किसी का शव मिले बॉडी मिले, वो जाकर अपना काम कर रहा था। और फिर इनको 5 पांडवों की, पांडव तो नहीं, 5 जो उन्होंने सोचा कि पांडव हैं और कुंती, उनकी जली हुई शरीर मिले, उनको लगा यही है, वो भीलनी थी। तो देखिए भगवान ने पहले से व्यवस्था की, भगवान भक्त की रक्षा के लिए बहुत व्यवस्था करते हैं। आप लोग सोचिए अपने जीवन में आप कैसे भक्ति में आए, आप जान जाएंगे कहीं ना कहीं भगवान की योजना थी। अगर ऐसा नहीं होता मेरे जीवन में तो मैं कभी यहां नहीं आता। ऐसा हुआ इसीलिए मैं भक्ति से जुड़ा, ऐसा हुआ इसीलिए मंदिर आया, नहीं तो कभी नहीं आता। भगवान की योजना थी। उस समय हमें नहीं पता था, उस समय हम सोच रहे थे भगवान ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। लेकिन आज लगता है कि अरे हाँ, अगर ऐसा नहीं किया होता, जैसे कल प्रभु जी बता रहे थे, मैं कारवार आया था तो बोर हो रहा था, लेकिन कारवार नहीं आता तो कभी भगवान की भक्ति नहीं करता। तो भगवान योजना करते हर व्यक्ति के लिए, हर भक्त के लिए योजना करते भगवान। तो पांडव चले गए, गंगा पार करवा दी। उस समय भी एक नाविक आए, विदुर ने भेजा और उसने नाव में बिठा के गंगा पार करा दी। और इधर सब दोष करने लगे। इतना ही नहीं, धृतराष्ट्र को भी बहुत शोक हुआ, सही में सच्चा दुख हुआ पहली बार, क्योंकि अब मर गए। तो वो ये दरअसल वो नहीं चाहता था, लेकिन कहना चाहिए चाहता भी था, नहीं भी चाहता था। तो बहुत दुख किया। खैर, सब लोग अब उनको जल अर्पण करना है, श्राद्ध करना है पांडवों का। भीष्म को विश्वास नहीं हो रहा था। धृतराष्ट्र तो तैयार हो गए, क्योंकि उनको विश्वास होना ही था, उनको तो पहले से पता था कि मैं ही मारने वाला हूं। लेकिन भीष्म को विश्वास नहीं हो रहा। भीष्म पूछने लगे, ये कैसे हुआ? अरे क्या उस महल की दीवारें भीम की शक्ति से ज्यादा थी? क्या भीम और अर्जुन में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो अपनी भुजाओं से उसकी दीवार को तोड़कर भाग सकते? ऐसा कैसे हुआ कि वो मर गए? विश्वास नहीं हो रहा था भीष्म को। भीष्म रो रहे थे, बहुत प्रेम करते थे पांडवों से, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, लेकिन बार बार प्रश्न कर रहे हैं कि क्या अर्जुन भी वहां कुछ नहीं कर पाया? वो अर्जुन जिसने बड़े बड़े राजाओं को हरा दिया, जिसने अकेले बड़े बड़े राजाओं को हराया, अपने तीर से जो वर्षा कर सकता था, तो वो अर्जुन कैसे मारा गया? क्या जब अग्नि हुई तो उसने तीर क्यों नहीं चलाए? अपने तीरों से वर्षा क्यों नहीं प्रकट की? क्यों नहीं भीम ने अपनी भुजाओं से तोड़ दिया उस दीवार को और निकल गए बाहर? मैं विश्वास नहीं कर सकता कि पांडव मर गए। लेकिन फिर भी विधि का विधान है, विधि के विधान को कौन रोक सकता है? समय बड़ा बलवान है, तो यह हुआ है। तो वो जल अर्पण करने जा रहे थे, श्राद्ध करने जा रहे थे पांडवों का, विदुर ने रोक दिया। विदुर भी दुख प्रकट कर रहे थे सबके साथ बैठकर, हाँ हाँ बड़ा बड़ी गलत बात है, अब क्या करें? वो नहीं करते तो सब लोग देखते, अरे पांडव मर गए और तुम बड़ी प्रसन्नता से खड़े हो, क्या बात है? तो वो भी दुख, हाय हाय पांडव चले गए, अच्छा नहीं हुआ। लेकिन जब जल अर्पण करने लगे, श्राद्ध करने लगे भीष्म, तो विदुर ने रोक दिया, आप श्राद्ध मत कीजिए उनका। तो भीष्म ने कहा, क्यों? तो उन्होंने धीरे से कहा, पांडव जीवित हैं, अभी मरे नहीं हैं। भीष्म ने हाथ पकड़ा विदुर का, वहीं लेकर चले गए साइड में, क्योंकि सबके सामने तो बात नहीं कर सकते थे, तो ले गए, सच सच बताओ क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि दरअसल धृतराष्ट्र और दुर्योधन की योजना थी मारने की, जो मुझे पता चल गई थी, इसलिए मैंने सारी व्यवस्था कर दी, आप चिंता मत कीजिए। तो पांडव जीवित हैं, पांडव जीवित है। भीष्म बहुत प्रसन्न हो गए। तो उधर वारणावत में जब लोगों ने इसे किया, तो वो भाग लिए वहां से पांडव। अब जन वन में भागे, जल्दी जल्दी चल रहे, अब थक गए, भूखे थे, प्यासे थे। तो उन्होंने कहा, हमसे तो नहीं चला जाता। तो भीम ने कहा, चिंता मत करो। कुंती को उन्होंने अपने कंधे पर बिठाया, दोनों नकुल और सहदेव को गोद में बिठाया, और अर्जुन और युधिष्ठिर उनको वो ऐसे चला रहे हैं अपने हाथों से। बोले, आप चिंता नहीं, मैं भगाता हूं आप। भीम में तो शक्ति थी, तो वो भागते भागते चलते रहे। अब चलते चलते एक स्थान पर आए, बहुत थक गए थे सब लोग। तो कुंती महारानी विलाप करने लगी। उन्होंने कहा, मेरे 5 पुत्र हैं और वो अभी मेरे साथ में हैं, बड़े शक्तिशाली हैं, लेकिन मुझे प्यास लगी है और वे लोग मुझे पानी तक नहीं पिला सकते, क्या लाभ है ऐसे पुत्रों का? कुंती महारानी ने कहा, देखिए कभी कभी ऐसा होता है जीवन में, सब कुछ होता है हमारे पास, शक्ति होती है, धन होता है। बड़े बड़े लोग उदाहरण है, बहुत बड़े उद्योगपति, करोड़ों रुपया है, हजारों लोग काम करते, लाखों लोग उनके लिए काम करते हैं, कई कंपनियां हैं, मर रहे हैं। वो व्यक्ति जिन्होंने खुद हॉस्पिटल खोले हुए हैं मर रहे, डॉक्टर बचा नहीं पा रहे, चाहे कितना ही पैसा क्यों ना हो। तो धन बचाता नहीं है। हम लोगों ने तो कितनी बार सुना, बड़े बड़े व्यक्ति मर जाते हैं, सारा धन सारी संपत्ति कुछ नहीं कर पाते। तो कुंती कहने लगी, पांच पुत्र हैं, पांचों साथ में हैं, पानी तक नहीं पिला सा पा रहे, क्या लाभ है। भीम को बहुत क्रोध आया, दुख हुआ। भीम ने कहा, आप चिंता मत करो, आप यहां बैठो, मैं अभी पानी लेकर आता हूं। और भीम चले गए पानी लाने के लिए। यहां ये लोग थके थे, सब सो गए। जब भीम वापस आए, भीम ने अच्छे से पानी पिया, स्नान किया, फ्रेश हो गए, तंदुरुस्त हो गए, फिर से वापस आए पानी लेकर, तो देखा कि सब सो रहे हैं। इतने थक गए थे कि जमीन पर ही सो गए थे। जब नींद आती है व्यक्ति को, तो मखमल का गद्दा नहीं मिले तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, जहां नींद आए वहां सो जाते हैं, है ना। हाँ, कुछ लोगों को तो इतनी आदत होती है कि वो आप खड़े खड़े सो जाते हैं, बैठे सो जाते हैं, बात करते करते सो जाते हैं, और प्रवचन में तो सबसे ज्यादा सोते हैं। कभी कभी लोग बोलते हैं, प्रभु जी आपका प्रवचन बहुत अच्छा लगता है। हमको पूछते, क्यों? बहुत बढ़िया नींद आती है उसमें। ठीक है हम कहते, कोई बात नहीं, भागवतम में सोते हो ना, कोई बात नहीं, आत्मा तो सुन रही है, उसको सुनने दो। तो भीम आए, भीम को बहुत दुख हुआ, भीम कोसने लगे धृतराष्ट्र को, दुर्योधन को, कि छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, तुम्हारी वजह से मेरी माँ, जिन्हें मखमल के गद्दों पर राजमहल में सोना चाहिए, जमीन पर सो रही है, और मेरे भाई धर्मराज, युधिष्ठिर, अर्जुन, ये सब जमीन पर सो रहे हैं केवल तुम्हारे कारण। तो जब ऐसे विलाप कर रहे थे, वहां पर एक राक्षस था, हिडिंब, और उसने देखा, रे बहुत दिनों बाद कोई मनुष्य मिला है खाने के लिए, बड़े दिनों से तो सब ये छोटे छोटे प्राणी खा रहा था, तो बहुत प्रसन्न हो गए, वो भी पांच एक साथ, और ऊपर से एक स्त्री छह, आज तो भरपूर खाऊंगा। उसने अपनी बहन को कहा, हिडिंबा को जाओ, वहां पर पांच मानव हैं और एक उनके साथ स्त्री है, एक काम करो, उनको मारकर मेरे पास लेकर आओ, मैं तुम्हें बताता हूं कैसे हम लोग खाएंगे, उनके गले में छेद करेंगे और जो गरम गरम खून निकलेगा ना, उसको पिएंगे, बड़ा आनंद आएगा। देखिए, ये राक्षस है राक्षसों को आनंद आता है इसमें, जो चीज हमारे लिए घृणित है, हमें तो सोचकर घृणा आती है कि कैसे किसी व्यक्ति के गले से खून निकल रहा है और आप उसको आहा बड़ा आराम से पी रहे हैं। ये राक्षस है, कोई तड़प रहा है, कोई मर रहा है, आप काट रहे हैं उसको। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब भी बकरे को काटा जाता है, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने देखा है, कटते हुए पैकेट में जब आता है तो उसमें कोई भावना नहीं होती है, इसलिए हमें पता नहीं चलता है कि कटते हुए कितना दर्द हुआ है। अगर आपको खाना है तो जाकर देखना चाहिए उसको कटते हुए, कैसे उसको मारते हैं, कैसे वो तड़पता है। कभी कभी तो मुर्गी को जरा सा उसका गला काटकर छोड़ दिया जाता है एक डब्बे में बंद, वो फड़फड़ाती रहती है, फड़फड़ाती, खून निकलता है, और उसको बंद कर देते हैं, थोड़े समय बाद मर जाती है, फिर निकाल कर काटते हैं। राक्षस है, आनंद लेते हैं उसमें। कौन ले सकता है ऐसे किसी प्राणी को तड़पाना केवल जिह्वा के स्वाद के लिए? जरा सा 15 मिनट का हमारा जिह्वा का स्वाद व्यक्ति की जान, प्राणी की जान ले लेते, वो भी तड़प तड़प के मरता। हमारे शरीर में जरा सा खून जरा कहीं कट जाए, हमें बड़ा दर्द होता है, दवाई लगाओ, ये लगाओ, वो काट दिया जाता है उसको गले से। गायों को कटते हुए हमने देखा है कि कैसे काटे जाते हैं, प्रत्यक्ष तो नहीं देखा लेकिन किसी ने वीडियो दिखाया, जिंदा गाय को उल्टा टांग दिया जाता है, उसके गले में ऐसे चाकू मारकर छेद करते हैं, बकेट में खून इकट्ठा करते हैं। राक्षस, राक्षस से भी बदतर है। और फिर उसको काट कर खाते हैं बड़े प्रेम से। कैसे अपने आप को मनुष्य कह सकते हैं? तो हिडिंब ने कहा लेकर आओ खून, गले में उसको काट के जब गरम गरम खून निकलेगा उसको पिएंगे और फिर बहुत मजे से सब खाएंगे और फिर हम दोनों नृत्य करेंगे। ये राक्षस प्रवृत्ति है, किसी को मार कर आनंद लेना। अगर हमें आनंद लेना है तो किसी पर अन्याय करके नहीं लेना चाहिए। आपके आनंद के कारण किसी व्यक्ति पर, किसी प्राणी पर अन्याय नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए, तब आप आनंद लीजिए। तो खैर हिडिंबा चली गई, हिडिंब की बहन थी हिडिंबा, और वो आई और उसने देखा कि पांचों सो रहे हैं, चार भाई और कुंती, और यहां देखा कि भीम खड़े हैं, और हिडिंबा भीम को देखकर बहुत आकर्षित हो गई। हिडिंबा ने सोचा इससे अच्छा पुरुष मुझे कहां मिलेगा पति के रूप में, इतना सुंदर, और इसकी बाहें देखो, इसका शरीर देखो, शक्ति, क्या शक्ति होगी इसमें। नहीं नहीं, ये मेरा भाई, इसकी मैं नहीं सुनूंगी। महाभारत में लिखा है इस प्रसंग के समय, इस श्लोक के समय, कि स्त्री अपने पति को ज्यादा महत्व देती है, इसीलिए भाई को, अभी जो भाई ने बोला था वो कैंसिल, मारने का प्रोग्राम कैंसिल, अब तो पति हो रहे हैं, तो अब जो भी है ये कहेंगे वो करूंगे। तो उसने देखा तो वो बड़ा सुंदर उसने रूप बना लिया। राक्षसों में ये शक्ति होती, जैसे शूर्पणखा भी जब आई थी रामचंद्र जी के पास तो उसने बहुत सुंदर अपने आप को बना लिया था। तो हिडिंबा ने भी अपने आप को सुंदर बना लिया। वैसे इस भौतिक जगत में जो भी आकर्षक चीज है वो ऐसे ही है, हमें दिखने में बहुत सुंदर लगती है, हम स्त्रियों की बात नहीं कर रहे हैं, निकाह जो आकर्षक चीज है, जैसे कोई खाने की चीज हो, कोई अन्य चीज हो, दिखने में बड़ी आकर्षक। इसीलिए आजकल देखिए, आजकल पैकिंग का जमाना है, आपको कोई चीज बेचनी हो, चीज कैसी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पैकिंग कैसी है, पैकिंग अच्छी कर दीजिए आपका चीज बिक जाती है ना। कलयुग है, आप देखिए दुकानों में बच्चों के लिए चिप्स के पैकेट होते हैं, जो बच्चों के लिए चिप्स के पैकेट है बड़े रंग बिरंगे होते हैं, कोई भी आप चिप्स का पैकेट देखिए प्लेन कलर का नहीं होगा कि एकदम सिंपल सादा, कोई नहीं, बड़े उसमें कलर, कुछ ये बना हुआ है, कुछ कार्टून बना हुआ है, क्यों? बच्चा वो पैकेट देखकर उसको नहीं पता अंदर क्या है, बच्चा क्या जानता है कौन से चिप्स है क्या है, लेकिन वो पैकेट देखकर मुझे ये चाहिए, मुझे पता नहीं क्या क्या नाम आते हैं आजकल कुछ पैकेट्स के, हैं कुरकुरे, लेस, जो भी और कुछ, तो बच्चा वो पैकेट देखता है उसको पता भी नहीं अंदर क्या है, मेरे लिए अच्छा है कि नहीं, कुछ अच्छा नहीं होता है। हमने देखा अभी कुछ समय पहले एक जगह ट्रैवल कर रहे थे तो एक बच्चे को पैकेट लेके दिया, इतना फूला वो पैकेट था जब लिया, सही में बता रहे हमने देखा, तो जब लिया पैसे देके इतना फूला हुआ पैकेट था, हमने सोचा ये बच्चा अकेले खाएगा कैसे इतना सारा, और जब उसको खोला हवा निकल गई सारी, उसमें कुछ था ही नहीं अंदर, इतना सा था, और वो भी जो था वो कोई शक्ति देने वाला नहीं था, बस जिह्वा को स्वाद देने वाला, बच्चे ने खाया चप 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 खत्म हो गया, ना उसको कुछ पोषण मिला, पैसा बर्बाद। हम सोच रहे थे इससे अच्छा कुछ फ्रूट्स वगैरह खरीद के देते उसको, तो बच्चा भी खाता उसको भी लाभ होता, लेकिन वो पैकिंग बड़ी अच्छी थी, आकर्षक, और इतना मोटा फूला हुआ था, पता नहीं क्या हवा भरते हैं कि क्या करते हैं अंदर, तो पैकेट फूला होता है, बच्चा यही चाहिए यही चाहिए, तो पैकिंग अच्छी थी। तो हिडिंबा ने भी अपनी पैकिंग अच्छी कर ली, अंदर तो राक्षसी थी, पैकिंग बढ़िया। भीम के सामने आई, उसने भीम से कहा कि मुझे आपसे प्रेम हो गया, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। भीम ने ऐसे देखा, कौन हो तुम? तो उन्होंने कहा मैं, दरअसल उसने बता दिया, मैं हिडिंबा हूं, राक्षसी हूं, हिडिंब मेरा भाई राक्षस यहीं पास में, आपको मारने के लिए भेजा था लेकिन आपको देखकर मेरा मन बदल गया, अब आप जल्दी से मेरे साथ चल दीजिए, हम लोग चले जाएंगे यहां से, नहीं तो हिडिंब जो है खा जाएगा। तो भीम ने कहा ये मेरे भाई हैं, ये सो रहे, इनको छोड़ के कैसे जा सकता हूं, ठीक है इन सबको लेके चलते हैं। तो आप सोचिए भीम को कोई कह रहा है कि किसी से डर कर भाग जाओ। तो भीम ने कहा कि जो भी तुम्हारा भाई है, जितना भी शक्तिशाली है, तुम चिंता मत करो, उसको आने दो। तो कह रही थी नहीं नहीं आप जानते नहीं है, मेरे भाई को बहुत बड़ा राक्षस है, खा जाएगा, आप चलिए, मैं अभी मन की गति से उड़ सकती हूँ, कहीं भी किसी भी स्थान पर जा सकती हूँ, आपको अभी लेके चली जाऊंगी, यहां से हिडिंब आ नहीं पाएगा। भीम तो और क्रोध आ गया, कोई देखिए किसी के पास शक्ति हो और वो भीम जैसा व्यक्ति और उसको बोले तुम डर के भाग जाओ यहां से, भीम ने तो कहा अरे ऐसे कैसे। तो इतने में उधर जो हिडिंब था वो सोच रहा था ये आई क्यों नहीं, क्या हो गया इसको। तो वो आया और देखा कि इसने रूप बदल लिया है, तो समझ गया कि इसको तो गड़बड़ हो गया, ये तो सब सारा मामला खाने की प्लानिंग थी यहां, तो ये तो कुछ और प्लानिंग हो गया। तो हिडिंब ने जोर से चिल्लाया और पहले अपनी बहन की तरफ देखकर कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया, अब मैं पहले तुम्हें मारूंगा फिर इन लोगों को मारूंगा। तो उसकी तरफ भागने लगा, तो उस समय बहुत सुंदर वर्णन है, भीम तो खड़े थे, भीम को वो कह रही थी पहले ही भाग जाओ चलो चलो, भीम ने कहा आने दो कोई बात। तो जब वो आया तो भीम उसको क्या कहते हैं, जब वो कहने भागने लगा उसकी तरफ, तो भीम शब्द इस्तेमाल किया श्लोक में, तिष्ठ तिष्ठति, तिष्ठ तिष्ठति मिली, ओ भाई खड़े रहो क्या बात है, हम लोग कहते ना तो उधर ही खड़े रहो, तो ऐसे वो बता रहे थे, भीम कह रहे थे खड़े रहो तिष्ठ तिष्ठति क्या बात है, तो मुझे उसे मारना है। तो भीम ने कहा कि देखो तुम्हें अपना बहुत बल का बहुत घमंड है ना, तो मेरे साथ युद्ध करो, अभी कुछ ही क्षणों में तुम्हें समाप्त कर दूंगा, और ये स्त्री इसको क्यों मारोगे, और जब तक मैं हूं तुम इसको नहीं मार सकते। तो हिडिंब को करे इसको क्या हो गया, मेरी बहन को मारने जा रहा हूं, ठीक है तुम्हें पहले मार लेता हूं, तुम्हारी इच्छा है तो तुम्हें मार लेता हूं। तो हिडिंब भाग कर आया, तो जब भाग कर आया तो ऐसा वर्णन है कि भीष्म ने अपने उल्टे हाथ से ऐसे घुमाकर उसको पकड़ा और खींच कर दूर ले गए, क्योंकि यहां युद्ध करूंगा तो ये लोग उड़ जाएंगे, अभी तक वो लोग सो रहे हैं, इतना सब कुछ हुआ वो लोग सो रहे हैं। तो भीम ने कहा इसको जरा दूर ले जाता हूं, तो दूर ले गए और उधर धड़ाधड़ मारामारी शुरू। अब भीम को तो बड़े दिनों बाद कोई, और सारा गुस्सा दुर्योधन का वो सब उस पर निकल गया बेचारे पे। बेचारा हिडिंब वो तो जानता नहीं था कि किसका गुस्सा निकाल रहे मेरे ऊपर, अभी तक गुस्सा आ रहा था सारा निकाल डाला, बहुत मारा उसको बेचारे को। ऑफकोर्स युद्ध हो रहा था तो बड़ी आवाजें आने लगी, तो ये लोग उठ गए कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने देखा कुंती ने उठ के एक स्त्री खड़ी है बड़ी सुंदर, तो पूछा कौन हो तुम, कोई अप्सरा हो कि क्या हो, देवगन्या हो, कौन हो। उसने बताया नहीं नहीं मैं तो राक्षसी हूँ, ये जो आप देख रहे हो ना ये जो फिल्म चल रही है यहाँ पर दोनों लड़ रहे हैं, दरअसल वो मेरा भाई है। तो उस समय कुंती ने कहा अच्छा, तो कुंती को कोई दुख नहीं हुआ कि भीम युद्ध लड़ रहे राक्षस से, मतलब ये नहीं कि कुंती हाय हाय मेरा पुत्र बचाओ। कुंती ने कहा अच्छा युद्ध कर रहा है ठीक है। और अर्जुन क्या कर रहे हैं, देखिए उस समय भी मजाक सूझ रहा है, यानी कितना विश्वास था अपने बल पर भीम के ऊपर। तो भीम अभी युद्ध लड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, अर्जुन जाके उनसे कहते हैं भीम भैया जी चिंता मत करना मैं खड़ा हूं, अगर आपसे नहीं लड़ा जाए तो मुझे बताना मैं लड़ लूंगा। ऐसे ही बोला, यही शब्द इस्तेमाल किए। भीम को बड़ा गुस्सा आ गया, अरे कोई उसको कह रहा है कि नहीं मार सकते तो मुझे बताओ मैं मार दूंगा, और हंस रहे थे अर्जुन, उसमें लिखा है कि हंसते हंसते उन्होंने ये बोला। तो उस समय भीम ने कहा नहीं नहीं अर्जुन तुम जहां हो चुपचाप वहीं खड़े रहो, अभी मैं इसको मार दूंगा। उसके बाद भी एक बार अर्जुन कहा चिंता नहीं करना मारना हो, अगर नहीं मारा जा सकता तो मैं हूं। अब देखिए चारों भाई थे, किसी को ये चिंता नहीं हुई कि अरे अरे राक्षस से लड़ रहा है मेरा भाई क्या होगा, कुछ नहीं मालूम है ये तो आराम से मार देंगे। और फिर भीम ने हिडिंब को मार दिया, वध कर दिया। उसके बाद सब लोग जाने लगे तो हिडिंबा भी पीछे पीछे चल दी। तो भीम ने देखा, भीम ने कहा ये राक्षसी अभी आ रही, अभी तुम्हारे भाई को मारा अब तुमको भी मार देता हूं। तो युधिष्ठिर ने कहा अरे क्या करते हो, स्त्री है उसको क्यों मारना है, उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। तो फिर उस समय हिडिंबा ने कहा कि देखिए अगर आप लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, मैंने भीम को अपना पति मान लिया है, और अगर आपने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं अपने प्राण दे दूंगी। कितनी सुंदर भावना है ना, ऑफकोर्स ये परंपरा है लेकिन कितनी सुंदर भावना है। हम जब ये पढ़ रहे थे महाभारत में, तो हम सोच रहे थे कि अगर ऐसा ही भाव हमारा कृष्ण के प्रति हो जाए कि हम कृष्ण के सामने आए और कृष्ण से कहें अगर आप हमें स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं अभी यहीं अपने प्राण दे दूंगा, होता नहीं है, हमारा ऐसा भाव नहीं है। कितना सुंदर है भाव, कितनी तीव्रता है प्रेम में कि अगर आपने स्वीकार नहीं किया तो प्राण दे दूंगी। अगर हम कृष्ण को यह कहें कि अगर आपने स्वीकार नहीं किया तो मैं प्राण दे दूंगी, निश्चित कृष्ण स्वीकार करेंगे, जैसे भीम ने स्वीकार किया। जब उसने कहा प्राण दे दूंगी तो युधिष्ठिर इत्यादि से बात की, कुंती महारानी ने बात की कि ठीक है, तो युधिष्ठिर ने अनुमति दी कि ठीक है भीम तुमसे विवाह करेंगे, क्योंकि अभी तक किसी का विवाह नहीं हुआ था, पहला विवाह हो रहा था, वो भी युधिष्ठिर हैं बड़े भाई उनको छोड़कर छोटे भाई का। तो गंधर्व विवाह हुआ, कुछ समय तक वो लोग साथ में रहे जब तक वो गर्भवती नहीं हुई और उन्होंने बच्चे को जन्म नहीं दिया। दरअसल वहां पर वर्णन है कि राक्षसियों में ऐसा नहीं होता कि गर्भ धारण करने के बाद बहुत समय बाद संतान, उसी समय संतान हो जाती है, तो उसी समय संतान हो गई, बहुत बढ़िया बड़ा लड़का हुआ विशाल, लेकिन उसके सर पे बाल नहीं थे, गंजा था। बच्चे वैसे बिना बाल के ही पैदा होते हैं ना, बाद में बाल आते हैं। तो उसको देखकर उसकी मां ने कहा कि अरे इसके तो घट पर, घट मतलब सर पर उत्कच बाल नहीं है, इसीलिए उसका नाम हो गया घटोत्कच। और उस समय उसकी मां चली गई, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था भीम को कि बस आप मेरे से विवाह कीजिए, उसके बाद जब भी आपको आवश्यकता हो मुझे स्मरण कीजिए, मैं आ जाऊंगी। और तब घटोत्कच वहां रहा और उसने कहा बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो उस समय दरअसल वहां पर वर्णन है महाभारत में कि घटोत्कच को भगवान ने योजना की अर्जुन को बचाने के लिए। देखिए कब बचाने वाले अर्जुन को, बहुत आगे, योजना अभी से प्रारंभ, घटोत्कच को उत्पन्न किया अर्जुन को बचाने के लिए भगवान ने। तो देखिए कितनी योजना भगवान करते, कितना सोचते हमारे बारे में, हम ही मूर्ख हैं भगवान के बारे में नहीं सोचते। वो दिन भर सोचते हैं, 24 घंटा सोचते हैं कैसे इस मूर्ख को मेरे पास लेकर आऊं, भाग रहा है मेरे से दूर। मैं मंदिर बनवाता हूं मंदिर नहीं आता, मैं प्रचार करने के लिए फेस्टिवल उत्सव मनाता हूं आकर चला जाता है। तो भगवान कितनी व्यवस्था, शास्त्र दे रहे, गुरु भेजते हैं, भक्त भेजते हैं, मंदिर बनवाते हैं, कीर्तन, क्या क्या नहीं कर रहे, लेकिन हमने तो प्रण लिया है कुछ भी हो जाए भगवान की भक्ति नहीं करूंगा, जीवन में सबसे बड़ा त्यागी बनूंगा। अरे लोग क्या त्याग करते हैं, घर त्याग देते हैं, धन त्याग देते हैं, परिवार त्याग देते हैं, मैंने तो कृष्ण को ही त्याग दिया, और इससे बड़ा त्यागी और क्या हो सकता है। इसलिए हम सबसे बड़े त्यागी बनना चाहते हैं, कृष्ण को त्याग देते हैं। लेकिन ये भावना अगर आए, अगर हम कृष्ण से कहें कि अगर आप हमें स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं अपने प्राण दे दूंगा, बाध्य होना पड़ेगा कृष्ण को, आना पड़ेगा कृष्ण को हमारी रक्षा के लिए, हमें स्वीकार करने के लिए। और यही संदेश हिडिंबा अपनी इन बातों से हम तक पहुंचाती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो अगली बार वर्णन करेंगे श्री कृष्ण का कि वो क्या कर रहे थे इस समय पर, और फिर पांडव जब आगे गए तो क्या क्या लिया।